اللهم صل على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے مثبت اور منفی خیالات دونوں سے اسے فائدہ پہنچتا ہے. ہم یہاں کئی بار اس موضوع پہ بات کر چکے کہ انسان کو اپنے خیالات مثبت رکھنے چاہیے، کہ روحانی ترقی میں مثبت خیالات بنیاد فراہم کرتے ہیں انسان کی صالح اعمال کے لیے، نیکی کی طرف لے جاتے ہیں مثبت خیالات انسان. لیکن یہ جو حدیث میں نے آپ سے عرض کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کے خیالات سے مومن کو فائدہ ملتا بتایا ہے. تو یوں وہ تمام گفتگو جو ہم یہاں کرتے رہے ہیں کہ انسان کو پازیٹیو تھنکنگ کی طرف جانا چاہیے اگر وہ روحانیت کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے، تو یہ گفتگو تو پھر حدیث کے منافی ہو گئی بظاہر. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے مومن کا، کہ مومن کو اس کے مثبت اور منفی خیالات سے فائدہ ملتا ہے. مومن کی تعریف جب حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھی گئی تھی، تو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ مومن وہ ہے جس کو نہ کسی چیز کے ملنے کی خوشی اور نہ کسی چیز کے کھونے کا دکھ ہو، وہ مومن ہے. اب آپ اس حدیث کو دیکھیے کہ مثبت اور منفی خیالات دونوں ہی فائدہ دیتے ہیں مومن کو، اور مسلمان مومن کے درجے پر اس وقت فائز ہوتا ہے جب اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، اور اس درجے کی محبت نکل جائے کہ نہ تو کسی چیز کے پانے کی کو خوشی ہو نہ کسی چیز کو کھو دینے کا دکھ پہنچے. یہ جو سفر ہے مسلمان سے مومن تک کا، یہ طے کرتا ہے انسان اسی انداز میں جو یہاں ہماری گفتگو ہوتی رہی، کہ روحانیت کے حصول کے لیے جو بنیاد فراہم کرے گی چیز وہ مثبت خیالات ہیں، پازیٹیو تھنکنگ ہے، کیونکہ پازیٹیو تھنکنگ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، عبادات سے پارسائی آ جاتی ہے. تو جب ہم ان تین چیزوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، عبادات، پازیٹیو تھنکنگ، نیکی، تو اس سے ہمیں ہماری روح کو بالیدگی حاصل ہوتی ہے اور مسلمان سے مومن تک کا سفر طے کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو جب ایک مسلمان مومن کے مقام پر چلا جاتا ہے، تو پھر اس کو اچھے اور برے خیالات متاثر نہیں کر پاتے، وہ اتنی مضبوط بنیاد کا حامل ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں اس کو نقصان نہیں دے پاتی. تو ہوتا یہ ہے کہ مومن کو جب کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، نقصان ہوتا ہے، تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کے انعامات براہ راست انسان کی روح کو پالتے ہیں، اس کی براہ راست اس کی روح پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور وہ اثر اندازی پازیٹیو ہوتی ہے. اس کی روح کی غذا ہیں وہ انعامات جو صبر کے جواب میں اسے ملیں گے. جب مومن مشکل میں ہوتا ہے صبر کرتا ہے اور وہ یوں پھل پاتا ہے، جب وہ خوشحال ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو وہ رب کا شکر ادا کرتا ہے، اس کا نام شکر گزار بندوں کی فہرست میں آتا ہے، جو بذات خود بہت بڑا انعام ہے. آن ٹاپ آف دیٹ शुक्र के नतीजे में उस पर नेमतें बढ़ा दी जाती हैं, तो यूं फल पाता है। ये दोनों ही चीजें इनाम हैं रब की तरफ से बंदे के लिए। क्योंकि बात चली रूहानियत की, इल्म की बात, हम लोग एक बात कहते हैं कि किसी मकाम पर पहुंचने के लिए ये जरूरी है कि इंसान आंखें बंद करके किसी की तकलीद करता चला जाए। मौलाना रोम को इससे इख्तलाफ है, वो बड़ी शिद्दत से इस तरीक़ाकार को कंडेम करते हैं। मौलाना रोम का कहना यह है कि तकलीद करे, लेकिन ये गौर जरूर करे कि ऐसा क्यों किया। जिन साहब की मैं तकलीद कर रहा हूं, उन्होंने ये काम किस लिए किया, कैसे किया, इसके फवायद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। और इसी जिम्न में उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी कि अगर किसी शख्स पर कुरान पाक लाद दिए जाएं और वो उठाए फिरे, तो चाहे सारी उम्र कुरान पाक वो सर पर उठाए फिरे, इल्मे कुरान से वाकिफ नहीं हो सकता। वो बारबरदारी तो कर रहा है, लेकिन इल्मे कुरान से वाकिफ नहीं हो सकता। फिर एक और मिसाल थी मौलाना रोम ने, बड़ी वो भी पते की मिसाल थी। मौलाना रोम इस जिम्न में फरमाते हैं कि एक मजदूर था, उसका पुराना जानने वाला उसे एक दिन मिला, तो उसने देखा कि वो मजदूर हड्डियों का पिंजर हो गया है, जबकि बड़ा सेहतमंद इंसान था वो। तो उस दोस्त ने अपने मजदूर दोस्त से पूछा कि ये तुम्हारा क्या हाल हो गया, क्या हुआ तुम्हें? तो उसने कहा कि मुझे देसी घी ने इस हाल को पहुंचा दिया। तो दोस्त ने कहा कि देसी घी तो बड़ा सेहत बख्श है, उससे तो इंसान की सेहत बहुत अच्छी होती है, तो ये क्या हुआ कि देसी घी ने तुम्हें इस हाल को पहुंचाया? ने कहा कि मुझे मजदूरी ही इस बात की मिली कि मैं देसी घी सर पर उठा के एक जगह से दूसरी जगह सारा दिन पहुंचाता रहूं, तो बड़ा मेहनत तलब काम है, तो मैं देसी घी सर पर उठा उठा के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता हूं, जिसकी वजह से मेरी सेहत दिन ब दिन गिरती चली गई है। तो मकसद उससे यह है कि इंसान बगैर इल्म हासिल किए, बगैर तहकीक किए, बगैर गौर व फिक्र किए चीजों पर, बगैर चीजों को जाने अगर तकलीद करता है, तो फिर उसका हाल वही होता है जो घी का कनस्तर उठाए उठाए फिरने वाले मजदूर का। तो जब हम किसी की तकलीद करते हैं, तो उस पर हम ये गौर व फिक्र जरूर करें कि ये क्यों किया गया, इसकी वजह क्या हो सकती है, इसके क्या फवायद हो सकते हैं, इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो तकलीद तो बहरहाल होगी ही। एक शख्स जो गुजरा है किसी रास्ते से, अगर उसके पांव के निशानात पर अपने पांव रखकर हम चलते रहें, तो उसी मकाम पर जा पहुंचेंगे जहां वो शख्स गया है। लेकिन अगर उसके पांव के निशानात को फॉलो कर रहे हैं हम, तो ये इस पर गौर व फिक्र करते रहें कि इस रास्ते से बंदा क्यों गुजरा है, उसे क्या तकलीफ आई होंगी, क्या उसे करना पड़ा होगा। तो अगर ये हम सोचते चले जाएं और इसकी गहराई में पहुंचे, तो रास्ता तो वही कटा, पहुंचे भी हम वहीं जहां वो शख्स पहुंचा था, लेकिन इस प्रोसेस में हमें ये पता लग गया कि ये रास्ता क्यों इख्तियार किया गया था, कितना वक्त लगा होगा, क्या तकलीफें आई होंगी, उसने ये तकलीफें सब क्यों बर्दाश्त की, छोड़ क्यों नहीं दी ये राह। तो वो जो इल्म हमें हासिल होगा, फिर हम उस मकाम पर पहुंचेंगे जहां इंसान जानने लगता है कि क्या चीज क्या है। ये गुफ्तगू की इब्तिदा हमने हदीस मुबारक से की थी, जिसमें जिक्र सबर करने का था कि मुश्किल वक्त में सबर करता है। ये मिसाल भी अगरचे मौलाना रोम ने तो किसी और चीज का मतलब वाजे करने के लिए बयान की थी, लेकिन इससे ये मतलब मुझे एक और दिखाई दिया उसमें कि वो मिसाल ज्यादा बेहतर फिट होती है। तो मौलाना रोम ने ये कहा कि एक बैलगाड़ी है जिस पर बोझ लदा है, बैल उसको खींच रहे हैं, उस बैलगाड़ी को जोर सारा बैल का लग रहा है, लेकिन वो बड़ी खामोशी से बगैर कोई आवाज निकाले, बगैर कोई एहतजाज किए सबर से उस बोझ को खींचता चला जा रहा है, और जब पड़ाव डलता है तो उस बैल को चारा और पानी उस मेहनत के नतीजे में मिलता है। लेकिन वो बैलगाड़ी जो खुद कुछ नहीं कर रही, बस उस पर बोझ लदा है, तो बैलगाड़ी को जब बैल खींचता है तो उसके पहियों से मुख्तलिफ किस्म की आवाजें बुलंद होती हैं, जैसे कि वो गड जो है वो फरियाद कर रही हो, बोझ के तले उसकी चीखें निकल रही हो। लेकिन जब पड़ाव डलता है तो उस गड को कुछ नहीं मिलता, छकड़े को कुछ नहीं मिलता, वो वैसे ही खड़ा है लदा हुआ उसी तरह। तो जो शख्स मुसीबत में मुश्किल वक्त में हाय हाय करता है, लोगों को जाके बयान करता है कि मैं मर गया, मैं मुश्किल में हूं, मेरी मदद करो किसी तरह, मुझे यहां से निकाल लो, ये क्या अल्लाह ने कर दिया मेरे साथ, ये जो हाय हाय वो कर रहा है, तो उसकी मिसाल उस बैलगाड़ी की तरह की है जिसके पहियों से मुख्तलिफ आवाजें निकल रही हैं, और पड़ाव डलता है, मंजिल पे पहुंचते हैं, उस छकड़े को कुछ नहीं मिलता, लेकिन बैल जो सब्र से खींच रहा है उसको पड़ाव डालने पर, मंजिल पे पहुंचने पर खाने पीने को भी मिलता है, अच्छा मालिक उसकी मसाज भी कर देगा, उसको नहला धुला देगा, साफ कर देगा। तो जो शख्स मुसीबत में सब्र करता है उसको फल मिलता है, और ये सब्र तो रूहानियत की राह में बहुत ही कमाल की चीज है। अगर कोई शख्स ये चाहे कि उसका रूहानियत का सफर शुरू हो जाए, और अगर वो सफर शुरू है तो तेज हो जाए, तो इसका एक तीर बहदफ नुस्खा अपने तजर्बे से मेरे इल्म की हद तक ये है कि लोगों के जबर, लोगों की ज्यादतियों को बड़े हंसी खुशी बर्दाश्त कर ले, पलटकर जवाब न दे। रूहानियत का सफर बहुत तेज होता है, और अगर इंसान ये चाहे कि मेरा रूहानियत का सफर न सिर्फ ये कि रुक जाए बल्कि मेरी वापसी शुरू हो जाए, उसे रिवर्स करना चाहे उस अमल को, तो उसका भी एक बहुत ही आसान और तीर बहदफ नुस्खा यह है कि आप दूसरों पर तंज करना शुरू कर दें, दूसरों की तजहीक शुरू कर दें, दूसरों की तहकीर शुरू कर दें, दूसरों की गीबत शुरू कर दें, दूसरों की ऐबजोई शुरू कर दें। तो जो कुछ रूहानियत मिली है, जो रूहानियत का सफर जारी हुआ है, ये रुक जाएगा, और न सिर्फ रुकेगा बल्कि रिवर्स हो जाएगा, सब जाया हो जाएगा। तो ये दोनों ही बड़े आसान नुस्खे हैं, इसलिए मैं एक अर्ज किया करता हूं कि जो शख्स ये चाहे कि मैं रूहानियत की राह पे चल निकलूं, तो उसका पहला कदम यह है कि जो शख्स हमारी तस्दीक करे, हमारी तहकीर करे, हम पर इल्जामात लगाए, हम पर कीचड़ उछाले, हमें दुख दे, हमारे नुकसान करे, हमारी जड़ें काटे, हमारी गीबत करे, हम न सिर्फ ये कि उसकी ये ज्यादती हंस के बर्दाश्त करें बल्कि अपने दिल में उसके खिलाफ कोई मैल न आने दें, जहां मौका मिले उसकी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ कर दिया जाए, ये पहला कदम है। शुरू में इसमें बहुत मेहनत लगती है कि अपने मुखालिफ अपने दुश्मन के बारे में दिल में जरा सी भी मैल ना आए, कोई जरा सा बुरा ख्याल ना आए उसके बारे में। लेकिन ज्यादा देर नहीं लगेगी इसमें, कुछ ही अरसे में इंसान को एक आदत सी हो जाती है कि हर आदमी की ज्यादती को हंस के टाल जाता है। इसके अगला मकाम है, उसको हम एक जुमले में तो यूं कह पाएंगे कि अगला कदम जो है रूहानियत के हसूल का, वो ये है कि हम दूसरों के लिए और खास तौर पे अपने मुखालिफीन और दुश्मनों के लिए इसार और कुर्बानी से काम लें। और इस इसार और कुर्बानी में आजजी और राजदारी, कि किसी शख्स को ये पता ही ना चलने पाए कि हमने किसी के लिए कुछ किया है। इंसान कोशिश करे कि दूसरे लोग यही समझते रहें कि ये इंसान तो किसी के काम ही नहीं आता, किसी का भला ही नहीं कर सकता ये शख्स। लेकिन अंदर खाने बड़ी खामोशी से ये सब काम करता चला जाए। सबसे मुश्किल काम इंसानी फितरत में ये है कि वो शख्स जिससे उसे नुकसान पहुंचा हो, दुख पहुंचा हो, तकलीफ पहुंची हो, जिसने उसके खिलाफ साजिशें की हों, उसकी जड़ें काटी हों, उसका भला चाहना, और भला भी इस अंदाज में चाहना कि किसी के इल्म में ना आने दे। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारा एक रवैया है कि हम बहुत हमदर्दी करते हैं दूसरों के साथ, उनकी खिदमत करते हैं, मदद करते हैं वक्त पर, लेकिन साथ उसको लेक्चर जरूर दे देंगे कि शर्म करो, तुम जवान आदमी हो, काम क्यों नहीं करते हो, जाके मेहनत करो, और जेब से निकाल के उसको पैसे दे देंगे। ये रवैया दुरुस्त नहीं है। रब ने हमें देते वक्त कभी ये नहीं हमसे कहा कि तुम तो मेरे सरकश बंदे हो, मेरी बात ही नहीं मानते, हर वो काम करते हो जिससे मैं मना करता हूं, ये ना किया करो, फिर वो हमें कुछ दे, ऐसा नहीं करता रब। रब तो ये भी नहीं देखता कि उसके दिए हुए रिस्क को हमने कहां इस्तेमाल किया है। वो तो कभी ये नहीं देखता कि सरफराज साहब को जो रिस्क दिया मैंने, वो सरफराज साहब जाके कैसीनो में जुआ खेला है उससे, सरफराज साहब ने रोजाना उस रिस्क से शराब पी ली, देता रहता है और जरूरत से ज्यादा देता है, दिल खोल के खुले हाथ से देता है, यही उसकी शान रबूबियत है। और जो कुछ वो हमें अता कर रहा है बगैर ये देखे कि हम उसके शुक्रगुजार बंदे हैं या सरकश, वो माल रब की मलकियत है, उसकी अपनी जाती चीज है। हमारे पास जो कुछ है वो तो रब का दिया है, हमारा तो कुछ है नहीं। एक जमाने में यहां एक जो किस्सा सुनाते हुए मैंने, बादशाह का दूसरा सवाल जो उसने अपने वजीर से पूछा था, वह अर्ज किया था कि बादशाह ने अपने वजीर से दूसरा सवाल ये पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है। तो दरवेश ने उस वजीर की जान बचाने के लिए उसे इस सवाल का जवाब यह दिया था कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि फला चीज मेरी मलकियत है, अगर ये मलकियत है मेरी तो ये फिर मरते वक्त मैं अपने साथ ले जाऊं, लेकिन कोई चीज साथ नहीं जाती। तो ये मलकियत का दावा कि ये चीज मेरी है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। तो हम तो अल्लाह के अता किए हुए रिस्क में से उसके किसी दूसरे बंदे की खिदमत करते हैं। तो जब रब के रिस्क से हम रब के बंदे ही की खिदमत कर रहे हैं, तो फिर ये नसीहतें और ये डांट कैसी, वो तो बहुत आजजी के साथ उसकी खिदमत में पेश की जानी चाहिए चीज, इस अंदाज में कि इंसान मुंह दूसरी तरफ कर ले कि ना मुझे देते हुए शर्म आए ना लेते वक्त उसको शर्म आए, तो मुंह दूसरी तरफ करके खामोशी से उसके हाथ में चीज दे दी जाए। और फिर उसके बाद इस तरह से उसको भुला दिया जाए फौरी तौर पर, गोया कि वो वाकया हुआ ही नहीं था। तो ये दूसरे कदम के तौर पर अल्लाह के दूसरे बंदों के लिए इसार और कुर्बानी और दरगुजर का रवैया, जब हम ये दो काम कर लेते हैं इस राह में तो रूहानियत का सफर जारी हो जाता है। इबादात हम पर फर्ज हैं, वो की जानी चाहिए, तो इबादात का सिलसिला साथ साथ जारी रहता है और हमारे रवैये लोगों के लिए बदलने लगते हैं। और अगर इस काम को कहीं हमने सुन्नत समझ के कर लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी सवाल लेकर आया कभी खाली हाथ नहीं लौटा, इसको सुन्नत समझ के कर लें तो सवाब मजीद मिल गया। दर हकीकत रूहानियत का हसूल सिर्फ तस्बीहों का खेल नहीं है, सिर्फ वजीफों का खेल नहीं है, ये जिंदगी के रवैयों को सुन्नत के मुताबिक ढाल लेने के नतीजे में रूहानियत हासिल होती है कि हम अपने रवैयों को, अपनी आदात को, अपने तौर तरीकों को जब सुन्नत के मुताबिक ढालने लगते हैं, सुन्नत की पैरवी करते हैं, 100% पैरवी तो शायद हमारे बस की नहीं है, लेकिन जहां तक मुमकिन है जब हम वो करने लगते हैं और साथ साथ इबादात का सिलसिला जारी रहता है, सोच को पाकीजा कर लेते हैं, तो रूहानियत आपको हासिल होने लगती है। ये जो मैं रवैयों की बात कर रहा हूं, एक वली अल्लाह थे तो उनके इर्द गिर्द के लोग अक्सर बेशतर एक तजर्बा करते थे, ये पुरानी बात है, उस वक्त आबादी ज्यादा नहीं थी, तो हशरातुल अर्द, कीड़े मकौड़े, जानवर, दरिंदे, परिंदे बहुत कसरत से थे क्योंकि आबादी कम थी, तो सांप से अक्सर बेशतर सफर में वास्ता पड़ जाता था। लेकिन उनके साथ फिरने वाले लोग बड़े हैरान होते थे एक बात पर कि कोई भी सांप हो उनके सामने आके बिल्कुल बेसर केचुआ बन जाता था। तो एक दिन किसी ने उनसे एक सवाल पूछा कि हजूर, ये जो हमें तजर्बा इस बात का होता है कि जहरीले से जहरीला सांप अगर हमें रास्ते में मिल गया तो आपके सामने वो बिल्कुल बेसर केचुआ होता है, तो उन बुजुर्ग ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये जितने भी जानवर हैं, दरिंदे हैं, परिंदे हैं, हशरातुल अर्ज हैं, ये सब जज्बों को हमसे ज्यादा समझते हैं, तो चूंकि मेरे दिल में इनके लिए मोहब्बत है कि मेरे रब के पैदा करदा हैं, उसी रब के पैदा करदा हैं जिस रब का पैदा करदा मैं हूं, मैं उनको अपने रब के, अपने खालिक की मखलूक समझ के उनसे बहुत प्यार करता हूं, वो जो मेरे दिल में इनके लिए प्यार है उस प्यार को ये पहचानते हैं, तो प्यार और मोहब्बत का जवाब ये प्यार और मोहब्बत से देते हैं मुझे, इसलिए मेरे सामने सांप और दूसरे दरिंदे मेरे दोस्त बनकर आते हैं। तो जब हमारे दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत है, हमारे से मोहब्बत रखते हैं, और ये लिल्लही मोहब्बत है, जैसे महावरतन तो लिल्लही बुगज है, लेकिन मैं उसके वजन पर ये कहता हूं कि लिल्लही मोहब्बत, तो ये अल्लाह के वास्ते जो हम मोहब्बत करते हैं उसकी दूसरी मखलूक से, कि ये हमारे ही खालिक की तखलीक है, वो मोहब्बत रंग लाती है हमारे जिस्म से निकलने वाली वाइब्रेशंस पॉजिटिव होती हैं, जो मकनातीसी लहरें हमारे अंदर से निकलती हैं वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी रखती हैं, दूसरे पर उसके असरात होते हैं और दूसरे के दिल में हमारे लिए लाइकिंग पैदा होती है, मोहब्बत पैदा होती है, प्यार पैदा होता है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि फकीर अपने दुश्मन से भी प्यार करता है, अपने दुश्मन को भी कभी नुकसान नहीं देता, ये बुनियादी रिक्वायरमेंट है। और अगर कोई ये चाहे कि मैं इन तमाम चीजों को इख्तियार किए बगैर रूहानियत के राह पर चल निकलूं, वो मुमकिन नहीं है, कहीं नहीं पहुंचेगा। अगर वो ये समझता है कि कोई भी शख्स जो ये रवैये नहीं रखता वो कहता है कि मैंने फलां चीज देखी, वो हेलुसिनेशन है, हकीकत नहीं है, वो उसका जहन उसे दिखा रहा है। तो रूहानियत हासिल करने के लिए मुझे अपने रवैये तब्दील करना होंगे, मुझे खल्के खुदा से प्यार करना होगा, अपने इंतकाम के जज्बे को हमेशा के लिए खत्म कर देना होगा। गुस्सा दिल में नहीं बल्कि यहां से ऊपर ऊपर होगा, वो भी अगर जरूरत पड़ जाए, कि बाज़ औक़ात करना पड़ता है दूसरे की इस्लाह के लिए। नफा और नुकसान का एहसास ही दिल से निकाल देना होगा। हम लोग अक्सर बेशतर सुनते हैं कलंदर, कई लोग लिखते हैं कलंदर या सिलसा, ये असल में एक रवैये का नाम है। कलंदर आजम जनाब हजरत अली करमला वजह हैं, और हजरत अली करमला वजह की जिंदगी ऐसी थी कि मेरा सब कुछ रब का है, मेरी तमाम चीजें मेरे रब के सुपुर्द हैं, मेरा रब जो करता वही सही है, बाकी सब गलत। मलकियत के एहसास से बहुत बुलंद। तो जो लोग वो राह ले लेते हैं रूहानियत में, उसको कलंदर या सिलसा कहना तो दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन कलंदराना रवैया उसके लिए सही लफ्ज है। जो ये कहा जाता है कि दुनिया में 2.5 कलंदर हुए हैं आज तक, जनाब हजरत अबू अली कलंदर, हजरत शाहबाज कलंदर और जनाब हजरत बीबी राबिया बसरी, ये दर हकीकत अपने रवैयों के लिहाज से उस मकाम में बहुत आगे चले गए हैं, क्योंकि इसका जो सही मकाम है उस पर तो एक ही हस्ती जा पहुंची, और वो हजरत अली करमला वजह थे। इसलिए कि हजरत अली करमला वजह की तरबियत जनाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से हुई है, उस तरबियत का वो एजाज है कि जनाब हजरत अली करमला वजह इल्म फहम फरासत और तवक्कल के उस मकाम पर दिखाई देते हैं हमें। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का नतीजा है कि बचपन ही से आपकी जेर तरबियत आ गए थे। तो उस मकाम को तो जनाब हजरत अली करमला वजह ही पहुंच सके, और कोई नहीं पहुंचा, न कोई पहुंचेगा। लेकिन उस राह में जब बहुत आगे चला जाए कोई, तो वो कलंदर कहलाता है। ये रूहानी मकाम नहीं है, जैसे आप कुतुब कहते हैं, गौस कहते हैं, ये उस तरह का मकाम नहीं है, ये रवैये का नाम है, जो वाकई बहुत दुश्वार है। बहुत कम लोग हैं जो इस पर कायम हो सकेंगे, लेकिन जो कायम हो गए फिर दिन भी उनका, दुनिया भी उनकी, आखरत भी उनकी, उनको रब ताला सब कुछ अता कर देता है। साहब ने ये तवील सवाल भेजा है, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से हर दर्दमंद दिल रखने वाला परेशान और आजुर्दा है इस बात से कता नजर कि कौन रास्त है और कौन गलत, बेगुनाह और मासूम लोग मुतासिर हो रहे हैं, मगर अहले इक्तदार अपने अपने नजरिए पर कायम है। इस इब्तला के दौर में लोग अहले इल्म और फकीर की तरफ देख रहे हैं कि वो इन सब का ये कहना है कि आने वाला वक्त बेहतर है। आपसे दरख्वास्त है कि कुछ लबकुशाई करें कि हम लोग किस तरह इस मुश्किल से निकल सकें, और दुआ भी फरमा दें कि बेगुनाह मासूम लोगों की जान माल और आबरू महफूज रहे। तो ये आखिर में एक शेर है जिसका न मुझे शौक है ना उसका अहल, कि आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं। मैं एक सच अक्सर बेशतर अपने बारे में बयान किया करता हूं कि ईमानदारी की बात यह है कि मैं पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूं, तालीम हासिल कर ही नहीं सका, और दूसरी मेरे बारे में सच्चाई यह है कि मैं हुकूमत करने के तौर तरीकों से कतई तौर पर ना वाकिफ और ना बलद हूं। फकीरी हुकूमती ओहदों से कहीं बुलंदतर है, تو اگر مجھے حکومت کرنے کے طریقے نہیں آتے تو مجھے فقیری کہاں سے آئے گی؟ کہ فقیری کیا ہوتی ہے؟ میں ایک بات جانتا ہوں کہ میرے رب نے یہ فرمایا ہے کہ مجھ سے اچھے گمان رکھو، میں اچھا ہی کروں گا، تو یہ ضرور ہے کہ میں رب سے اچھے گمان رکھتا ہوں، اور یہ میرا ایمان ہے کہ اگر رب نے فرما دیا قرآن میں کہ مجھ سے اچھے گمان رکھو، میں اچھا ہی کروں گا، تو جب میں اچھے گمان رکھ رہا ہوں تو اچھا ہی کرے گا. اس لیے پاکستان کے بارے میں میرا گمان ہمیشہ اچھا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اسے بلندی کی طرف لے جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ میرا رب اپنے الفاظ کا پاس رکھے گا کہ اس سے زیادہ الفاظ کا پاس رکھنے والا کوئی نہیں، کہ اس سے ہم اچھا گمان کریں وہ انشاءاللہ اچھا ہی کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ انسان نے یہ پوچھا کہ ہم کیا کریں. اس سلسلے میں میری پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اس ہم کو میں بدل دیجئے. جب تک انسان ہم کے چکر میں رہتا ہے درست نہیں ہو پاتا. جب میں سے اس ہم کو ریپلیس کر دیتا ہے تو پھر امکانات بڑے روشن ہوتے ہیں کہ وہ سدھر جائے گا. تو میں اس ہم کا تو جواب شاید نہ دے پاؤں کہ ہم کیا کریں، لیکن میں کا جواب دے سکتا ہوں کہ میں کیا کروں. تو میرے اوپر تو ایک چیز لازم ہے کہ میں اپنے رویوں کو درست رکھوں، زبان سے بلا تحقیق کوئی بات نہ نکالوں. جب میری زبان سے کوئی بات ادا ہو تو میں اس کو حق اور انصاف کے ترازو پر تول لوں کہ میری بات کہیں حقائق کے منافی تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کسی جذبے کے تحت دوسرے کے لیے ناانصافی کر رہا ہوں. کیونکہ فقیر کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ جب وہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ اپنی اولاد کے بارے میں فیصلہ کرے، اپنی ذات اس کی انوالو ہو وہاں فیصلہ کر رہا ہو، تو اپنی ذات سے باہر نکل جاتا ہے. اگر کوئی شخص اپنی ذات سے باہر نہیں نکل سکتا تو وہ فقیر ہی نہیں ہے، کیونکہ انصاف نہیں ہو سکتا اپنی ذات سے باہر نکلے بغیر، وہاں جذبات اسے مغلوب کر دیں گے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ فقیر یہ کہے کہ یس، یہ میرے بیٹے نے کام کیا اور غلط کیا، سارا قصور میرے بیٹے کا ہے، لیکن میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا بحیثیت باپ کے. حق کی بات کر دے گا، وہ فیصلہ بھی سنا دے گا بیٹے کے خلاف، لیکن بعد میں یہ کہہ دے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، میرے بیٹے نے قتل کیا اور یہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کیا جانا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہوگا بحیثیت باپ کے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑا نہ ہو. یہ فیصلہ سنانے کے بعد یہ کہہ دے گا کہ میں والنٹیئر کرتا ہوں اپنے آپ کو کہ اس قتل کا قصاص میری جان لے کر لے لیا جائے، میں اپنے بیٹے کی جگہ قتل ہونے کو تیار ہوں. یہ تو کر دے گا فقیر، لیکن جب بات کرے گا، فیصلہ کرے گا تو بہت صحیح کرے گا. تو جب ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اپنی تمام تر جذباتی وابستگی، اپنی وفاداریوں اور اپنی محبت سے بالا تر ہو کر حق کی بات کریں. ایک زمانے میں نوائے وقت میں ایک مضمون شائع ہوا تھا، کسی صاحب نے میرے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی اسی جگہ پر، تو اس کو انہوں نے کوٹ کیا تھا، تو اس کا عنوان رکھا تھا اس مضمون کا، اصلاح معاشرہ کا یک نکاتی منشور. اس میں میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جس دن ہم نے اپنی گواہی درست کر لی ہماری بہت سی پرابلمز ختم ہو جائیں گی. ہماری گواہی درست نہیں ہے، اور گواہی سے مراد کورٹ میں گواہی دینا نہیں ہے. جب ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو انفیکٹ ہم گواہی دے رہے ہوتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص شراب پیتا ہے، یہ میں گواہی دے رہا ہوں، اب بہت بڑی ذمہ داری اپنے ذمہ لے رہا ہوں جس کے لیے میرا مواخذہ ہو جائے گا. جب میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں غلط ہے، फलाने करप्शन की है, मैं गवाही दे रहा हूं, उसके लिए मैं जवाबदेह हूं, उसकी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर और मुझे जवाब देना है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो हम अपनी गवाही को अगर दुरुस्त कर लें, हमारी गवाही सिर्फ और सिर्फ हक और सच्चाई पर मबनी हो, बहुत से मामलात हमारे ठीक हो जाएंगे, माशरा बहुत बड़ी हद तक दुरुस्त हो जाएगा। बाकी ये रह गई बात जो आपने शेर लिखा है आखिर में, आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं। तो भाई आप तो हाथ उठा सकते हैं, सब लोग भले लोग हैं, नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं आप, लेकिन मैं तो बड़ा गुनहगार और बहुत ही बुरा शख्स हूं, तो मेरे हाथ उठाने से क्या होगा। जरूर दुआ कीजिए अल्लाह के हजूर के, वो दुआएं सुनने वाला है, वो उन लोगों की भी दुआएं सुनता है जो उसे मानते ही नहीं, वो उनकी भी दुआएं सुनता है जो मेरी तरह के गुनहगार और सरकश लोग हैं, वो नेक लोगों की भी दुआएं सुनता है। वो तो कमाल का है कि वो देखता ही नहीं, क्या उसकी शान रबूबियत है कि वो ये देखता ही नहीं कि कौन मांग रहा है, वो तो सिर्फ देता है और देता भी है आंखें बंद करके, उससे कोई मांग ले सबको अता कर देगा वो। आपसे इजाजत चाहता हूं अगली इतवार तक के लिए, बशर्ते जिंदगी पर अगली इतवार मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।